छह कबीर की कविता। कबीर की कविता पर अब तक काफी कुछ लिखा और कहा जा चुका है और इस कहे और लिखे में बड़े आचार्यों तक की शिरकत है, किंतु कबीर और उनकी कविता की जब भी चर्चा होती है दो बड़े नाम जरूर सामने आते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और आचार्य हजाय प्रसाद द्विवेदी। कबीर पर लिखने वालों में सबसे कम आचार्य शुक्ल ने लिखा है, किंतु कबीर या उनकी चर्चा में सबसे ज्यादा उल्लेख उन्हीं का होता है। इस नाते कि कबीर को प्रखर प्रतिभा का धनी मानते हुए भी उन्होंने उनकी कविता को उसके हर आयाम पर खारिज किया है। कबीर का रहस्यवाद उनकी निगाह में विदेशी है, वह शुक्ल जी की बौद्धिकता के अनुरूप भी नहीं है। उनका हठयोग नाशपंथियों की तुच्छ साधना और उनकी उलटबाजियां भोली भाली जनता पर अकारण रोब जमाने और उसे आतंकित करने का प्रयास कर है। कबीर की प्रेम भावना सूफियों से उधार ली गई है और उनकी भक्ति का आधार ही गलत है। निर्गुण भक्ति का आलंबन हो ही नहीं सकता। कबीर का समाज दर्शन उनकी लोक धर्म विरोधी विध्वंसक मानसिकता का प्रतिफल है और इन चीजों के बीच से उभरती हुई उनकी कविता सांप्रदायिक शिक्षा मात्र। आश्चर्य होता है कि अपने ही द्वारा माने गए प्रखर प्रतिभा के धनी इस संत आचार्य शुक्ल को सकारात्मक कहने के लिए कुछ भी नहीं मिला। आचार्य शुक्ल बड़े आचार्य हैं, बड़ों की उपलब्धियां जितनी बड़ी होती हैं, उनकी चूकें भी उतनी ही बड़ी हुआ करती हैं। जहां तक आचार्य हजाय प्रसाद द्विवेदी का संबंध है, हर स्तर पर आचार्य शुक्ल के अभिमत के विपरीत उन्होंने कबीर की उनकी कविता की हर पहलू पर विशेषता के साथ कभी कभी भावुकता के स्तर तक भी जाकर हिमायत की है और उसे सराहा है। उन्हें कबीर की सोच या उनकी कविता में कहीं भी असंगतियां तथा अंतर विरोध नहीं दिखाई पड़े। आचार्य शुक्ल हो या आचार्य द्विवेदी हो या कबीर पर लिखने वाले अन्य विद्वान, कबीर संबंधी उनके विचार हमें कबीर और उनकी कविता को समझने में दूर तक मदद देते हैं, किंतु लगता है बावजूद कबीर पर कहे और लिखे गए इस तमाम कुछ के कबीर की कविता अपनी समग्रता और अपनी जटिलता में पूरी तरह खुल नहीं पाई है और जो कुछ उन पर कहा और लिखा गया है वह या तो इकहरा है या अतिवादी। अतएव सदी के इस अंत और नई सदी के आगमन की बेला में मेरी गुजारिश कबीर और उनकी कविता को उनके पूरेपन में, उनकी पूरी समग्रता और जटिलता में, उनके अंतर विरोधों के साथ समझने और व्याख्यायित करने को लेकर है। समारोह धर्मी मानसिकता से हटकर उसे अपनी पूरी वस्तुनिष्ठता में उजागर करने को लेकर है, ताकि धुंध और विभ्रमों से अलग उसे उसकी समूची विश्वसनीयता में पाया जा सके। इसी बात से संबद्ध पर दूसरी बात भी है। मैंने ऊपर एक सदी के अंत और एक नई सदी के आगमन की बात की है। हमारे अतिशय प्राचीन देश का बहुत कुछ नई सदी में जा रहा है और ले जाया जा रहा है, बहुत कुछ छूट भी रहा है जो जरूरी भी है और लाजमी भी। इसी तरह हमारी सांस्कृतिक विरासत का भी बहुत कुछ छूट रहा है और बहुत कुछ नई सदी में जा या ले जाया जा रहा है। मेरा कुछ ऐसा मानना है कि क्या समय हमारे लिए भी अनुकूल समय है कि ग्रहण और त्याग का जो विवेक हमें परंपरा से मिला है उसकी कसौटी का इस्तेमाल करते हुए हम यह तय करें